नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। थॉमस डब्ल्यू मैलोन की पुस्तक सुपरमैन सामूहिक बुद्धिमत्ता, संगठन सिद्धांत और प्रौद्योगिकी के भविष्य पर केंद्रित एक विचार प्रधान गैर कथा पुस्तक है। मैलोन, जो सामूहिक बुद्धिमत्ता के शोध से जुड़े रहे हैं, उस लोकप्रिय धारणा को चुनौती देते हैं कि भविष्य की निर्णायक शक्ति केवल स्वायत्त एआई होगी। उनका तर्क है कि अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन लोगों और कंप्यूटरों के ऐसे संयुक्त समूहों में होगा जो मिलकर सोचते, सीखते, निर्णय लेते और समस्याएं हल करते हैं। वे इन्हें सुपर माइंड्स कहते हैं। कंपनी, बाजार, लोकतंत्र, समुदाय और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र सभी इस दृष्टि से सामूहिक सोचने वाली व्यवस्थाएं हैं। पुस्तक का उद्देश्य तकनीक को मानव श्रम के प्रतिद्वंद्वी के बजाय मानवीय सहयोग को विस्तृत करने वाले साधन के रूप में देखना है। उदाहरणों और वैचारिक ढांचे के माध्यम से यह पूछती है कि समूहों को अधिक बुद्धिमान कैसे बनाया जाए, और यह भी कि गलत सूचना या खराब प्रोत्साहनों जैसी स्थितियों में वही समूह कम बुद्धिमानी से क्यों काम कर सकते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सुपरमाइंड की अवधारणा व्यक्ति के बजाय व्यवस्था को बुद्धिमत्ता की इकाई मानती है। मैलोन के अनुसार, सुपरमाइंड ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक लोग और अक्सर कंप्यूटर भी मिलकर ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे बुद्धिमान कहा जा सकता है। यह परिभाषा बुद्धिमत्ता को केवल किसी एक असाधारण व्यक्ति की क्षमता मानने से रोकती है। किसी कंपनी में अलग अलग लोग सूचना जुटाते हैं, विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं और निर्णय लागू करते हैं। किसी बाजार में खरीदार, विक्रेता और कीमतें बिखरी हुई जानकारी को संकेतों में बदलते हैं। इस तरह परिणाम किसी एक सदस्य के दिमाग से नहीं, बल्कि संबंधों, नियमों और सूचनाओं के प्रवाह से पैदा होता है। पुस्तक का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मानव इतिहास की अधिकांश बड़ी उपलब्धियां दीर्घकालिक सहयोग का फल रही हैं। इसलिए किसी संस्था का मूल्यांकन केवल उसके नेताओं या कर्मचारियों की प्रतिभा से नहीं किया जा सकता। यह देखना भी जरूरी है कि वह संस्था किसे सूचना देती है, कौन निर्णय करता है, असहमति कैसे सामने आती है और त्रुटियां कैसे सुधरती है। यह दृष्टिकोण संगठनों की समस्याओं को नया रूप देता है। प्रश्न केवल यह नहीं रहता कि बेहतर लोगों को कैसे नियुक्त करें, प्रश्न यह बनता है कि ऐसी सामूहिक व्यवस्था कैसे रची जाए जिसमें सामान्य क्षमताओं वाले लोग भी मिलकर बेहतर निर्णय दे सकें। यही पुस्तक की मूल वैचारिक पारी है। दूसरा, पांच संगठनात्मक रूप बताते हैं कि सामूहिक बुद्धिमत्ता के नियम एक जैसे नहीं होते। पुस्तक सुपरमाइंड्स को पांच प्रमुख रूपों में देखने का प्रस्ताव रखती है। पदानुक्रम, बाजार, लोकतंत्र, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र। पदानुक्रम में अधिकार और जिम्मेदारियों की स्पष्ट श्रृंखला होती है, इसलिए समन्वय तेज हो सकता है, पर नीचे से आने वाली जानकारी दब भी सकती है। बाजार मूल्य संकेतों के जरिए अनेक स्वतंत्र निर्णयों को जोड़ते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य सार्वजनिक हित से अपने आप में ही जुड़ता। लोकतंत्र व्यापक भागीदारी और वैधता देता है, फिर भी सूचित विचार, प्रतिनिधित्व और संस्थागत नियमों की गुणवत्ता उसके परिणाम बदलती है। समुदाय साझा पहचान, भरोसे और अनौपचारिक मानदंडों से काम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में कंपनियां, ग्राहक, नियामक और अन्य संस्थाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है, भले ही कोई एक केंद्रीय नियंत्रक न हो। यह वर्गीकरण किसी एक आदर्श मॉडल की घोषणा नहीं करता, इसके बजाय यह दिखाता है कि हर रूप अलग प्रकार की समस्या और जोखिम लेकर आता है। उदाहरण के लिए, नवाचार के लिए खुला समुदाय उपयोगी हो सकता है, जबकि संकट में स्पष्ट जवाबदेही वाला पदानुक्रम जरूरी हो सकता है। व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि नेताओं को अपनी संस्था को केवल चार्ट या विभागों के रूप में नहीं, उसकी सामूहिक निर्णय प्रणाली के रूप में समझना चाहिए। फिर वे तय कर सकते हैं कि किस काम में केंद्रीकरण, प्रतिस्पर्धा, मतदान या खुला सहयोग उचित है। तीसरा, कंप्यूटर का मुख्य योगदान मानव निर्णय को हटाना नहीं, सामूहिक संज्ञान को बढ़ाना है। मैलोन लोगों और कंप्यूटरों के संबंध को प्रतिस्थापन की कहानी के बजाय पूरक क्षमताओं की कहानी मानते हैं। कंप्यूटर विशाल मात्रा में जानकारी को तेजी से संग्रहित, व्यवस्थित और विश्लेषित कर सकते हैं। मनुष्य संदर्भ, उद्देश्य, नैतिक निर्णय, रचनात्मक व्याख्या और बदलती परिस्थितियों की समझ प्रदान करते हैं। जब इन क्षमताओं को सही ढंग से जोड़ा जाता है तो सुपरमाइंड की क्षमता बढ़ सकती है। पुस्तक सामूहिक मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में निर्णय लेना, सृजन करना, संवेदन करना, याद रखना और सीखना जैसे कार्यों पर ध्यान देती है। डिजिटल प्रणालियां इन कार्यों में लोगों को जोड़ सकती है, डेटा तक पहुंच दे सकती है और विकल्पों की तुलना आसान बना सकती है। उदाहरण के तौर पर, किसी जटिल निर्णय में प्रणाली प्रासंगिक पैटर्न या संभावित विकल्प सामने ला सकती है। लेकिन लक्ष्य चुनना और परिणामों की जिम्मेदारी लेना मनुष्यों का कार्य बना रहता है। यह अंतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेज गणना को बुद्धिमान शासन समझ लेना भूल हो सकती है। खराब डेटा, पक्षपाती लक्ष्य या अस्पष्ट जवाबदेही के साथ वही तकनीक गलत निर्णयों को तेजी से फैला सकती है। इसलिए पुस्तक की मानव कंप्यूटर साझेदारी में तकनीकी क्षमता के साथ प्रक्रिया डिजाइन, मानवीय निरीक्षण और स्पष्ट उद्देश्यों की भी केंद्रीय भूमिका है। चौथा, हाइपर कनेक्टिविटी AI से अधिक निकट और प्रभावशाली परिवर्तन हो सकती है। पुस्तक का एक विशिष्ट तर्क हाइपर कनेक्टिविटी पर है, अर्थात लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर और नए तरीकों से जोड़ने की क्षमता। मेलोन मानते हैं कि मानव स्तर की सामान्य AI की कल्पना करना आसान है, लेकिन उसे बनाना कठिन हो सकता है। इसके विपरीत डिजिटल नेटवर्क के जरिए अधिक लोगों, विचारों और विशेषज्ञताओं को जोड़ना अपेक्षाकृत संभव है, जबकि उसके दूरगामी परिणामों की कल्पना करना कठिन है। इसीलिए इंटरनेट आधारित सहयोग, साझा ज्ञान मंच और वितरित समस्या समाधान को केवल संचार उपकरण नहीं समझना चाहिए। वे ऐसे ढांचे बन सकते हैं जिनमें अलग स्थानों पर मौजूद लोग एक ही समस्या पर योगदान देते हैं। विकिपीडिया जैसी परियोजनाएं इस संभावना का सहज उदाहरण है, जहां ज्ञान का निर्माण और संशोधन अनेक योगदानकर्ताओं द्वारा होता है। फिर भी अधिक संपर्क अपने आप बेहतर सामूहिक सोच की गारंटी नहीं है। यदि ध्यान आकर्षित करने वाले तंत्र सत्यापन से अधिक उत्तेजना को पुरस्कृत करें, तो नेटवर्क गलत सूचना और ध्रुवीकरण को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए वास्तविक प्रश्न नेटवर्क का आकार नहीं, उसका डिजाइन है। कौन योगदान दे सकता है, गुणवत्ता की जांच कैसे होगी, विशेषज्ञता को कैसे पहचाना जाएगा और असहमति को कैसे संभाला जाएगा? हाइपर कनेक्टिविटी की शक्ति तभी उपयोगी बनती है जब भागीदारी, सत्यापन और उत्तरदायित्व के नियम उसके साथ विकसित हो। अंत में, बेहतर सुपरमाइंड बनाने में क्षमता के साथ लक्ष्य, प्रोत्साहन और उत्तरदायित्व भी निर्णायक है। सुपरमाइंड्स का आशावादी पक्ष यह नहीं कहता कि हर बड़ा समूह अनिवार्य रूप से बुद्धिमान होगा। समूहों के पास अधिक डेटा, बेहतर एल्गोरिदम और व्यापक भागीदारी होने पर भी वे गलत दिशा में जा सकते हैं। कारण यह है कि सामूहिक परिणामों को लक्ष्य, प्रोत्साहन, सत्ता का वितरण और सूचना की गुणवत्ता आकार देते हैं। यदि किसी मंच पर तेजी से प्रतिक्रिया देना सत्यता जांचने से अधिक लाभदायक हो, तो वह सामूहिक समझ के बजाय भ्रम को बढ़ा सकता है। यदि किसी संस्था में बुरी खबर ऊपर तक नहीं पहुंचती, तो उसका पदानुक्रम सीखने की क्षमता खो देता है। यदि निर्णयों से प्रभावित लोगों की आवाज अनुपस्थित है, तो लोकतांत्रिक या बाजार आधारित प्रक्रिया भी अधूरी जानकारी पर चलेगी। मेलोन की रूपरेखा इसलिए तकनीकी अपनाने की सरल सलाह नहीं है, यह संस्थागत डिजाइन का प्रश्न है। समूहों को यह स्पष्ट करना होता है कि उसका मानवीय उद्देश्य क्या है, किन निर्णयों में मशीन की सिफारिश उपयोगी है और अंतिम जवाबदेही किसकी है। विविध दृष्टिकोण और रचनात्मक असहमति त्रुटियों को पकड़ने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सुनने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया चाहिए। पुस्तक का संतुलित संदेश यही है कि कंप्यूटर सामूहिक क्षमता को बढ़ाते हैं, पर वे अपने आप सामूहिक विवेक, न्याय या सार्वजनिक हित उत्पन्न नहीं करते। निष्कर्ष में, सुपरमाइंड्स उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो AI, भविष्य के काम प्रबंधन, डिजिटल प्लेटफॉर्म या लोकतांत्रिक संस्थाओं को केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि सामूहिक निर्णय की समस्या के रूप में समझना चाहते हैं। संगठन के नेता, नीति निर्माता, उत्पाद डिजाइनर, शोधकर्ता और सहयोग आधारित टीमों में काम करने वाले लोग इससे एक उपयोगी विश्लेषणात्मक भाषा पा सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ किसी तैयार नुस्खे में नहीं बल्कि बेहतर प्रश्नों में है। किसी संस्था में ज्ञान कहाँ जमा है, निर्णय प्रक्रिया में कौन शामिल है, तकनीक किस मानवीय क्षमता को बढ़ा रही है और त्रुटि होने पर सुधार कैसे होगा, जैसे प्रश्न इसके जरिए अधिक स्पष्ट बनते हैं। बौद्धिक रूप से यह AI संबंधी भय और उत्साह दोनों को संतुलित करती है। यह मशीनों की क्षमता को कम नहीं आंकती, लेकिन ध्यान उस व्यापक व्यवस्था पर ले जाती है जिसमें मशीनें, लोग, नियम और उद्देश्य साथ काम करते हैं। इसी कारण यह केवल स्वचालन या एल्गोरिदम पर केंद्रित पुस्तकों से अलग खड़ी होती है। इसका केंद्र एकल बुद्धिमान मशीन नहीं बल्कि सामूहिक बुद्धिमत्ता की संरचना है। इसकी सीमा यह है कि व्यापक वैचारिक ढांचा चाहने वाले पाठकों को यह अधिक संतोष देगा, जबकि चरणबद्ध कार्यान्वयन पद्धति खोजने वालों को अतिरिक्त स्रोतों की जरूरत पड़ सकती है। फिर भी मानव कंप्यूटर संयोग को समझने के लिए इसकी सबसे बड़ी देन यह है कि यह लोगों बनाम कंप्यूटर की बहस को लोगों और कंप्यूटरों की साझा जिम्मेदारी के प्रश्न में बदल देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं थॉमस W. मेलोन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।